रीड आउट लाउड और पंडित टोडरमल स्मारक प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर हुकुमचंद भारिल द्वारा रचित पुस्तक मैं स्वयं भगवान हूं। अध्याय पहला, मैं स्वयं भगवान हूं। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कहता है कि सभी आत्मा स्वयं परमात्मा है। स्वभाव से तो सभी परमात्मा हैं ही, यदि अपने को जाने पहचाने और अपने में ही जम जाएं, रम जाएं, तो प्रकट रूप से पर्याय में भी परमात्मा बन सकते हैं। जब यह कहा जाता है तो लोगों के हृदय में एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि जब सभी परमात्मा हैं तो परमात्मा बन सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? और यदि परमात्मा बन सकते हैं, यह बात सही है, तो फिर परमात्मा है? इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि बन सकना और होना दोनों एक साथ संभव नहीं है। भाई, इसमें असंभव तो कुछ भी नहीं है, पर ऊपर से देखने पर भगवान होने और हो सकने में कुछ विरोधाभास अवश्य प्रतीत होता है, किंतु गहराई से विचार करने पर सब बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। एक सेठ था और उसका 5 वर्ष का एक इकलौता बेटा, बस 2 ही प्राणी थे। जब सेठ का अंतिम समय आ गया तो उसे चिंता हुई कि यह छोटा सा बालक इतनी विशाल संपत्ति को कैसे संभालेगा। अतः उसने लगभग सभी संपत्ति बेचकर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और अपने बालक के नाम पर बैंक में 20 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के अंतर्गत जमा करा दिए। सेठ ने इस रहस्य को गुप्त ही रखा, यहां तक कि अपने पुत्र को भी नहीं बताया, मात्र एक अत्यंत घनिष्ठ मित्र को इस अनुरोध के साथ बताया कि वह उसके पुत्र को यह बात तब तक न बताए जब तक कि वह 25 वर्ष का न हो जावे। पिता के अचानक स्वर्गवास के बाद वह बालक अनाथ हो गया और कुछ दिनों तक वो बची खुची संपत्ति से आजीविका चलाता रहा, पर अंत में रिक्शा चलाकर पेट भरने लगा। चौराहे पर खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगाता कि 2 रुपए में रेलवे स्टेशन, 2 रुपए में रेलवे स्टेशन। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वह रिक्शा चलाने वाला बालक करोड़पति है या नहीं? क्या कहा? नहीं। क्यों? क्योंकि करोड़पति रिक्शा नहीं चलाते और रिक्शा चलाने वाले करोड़पति नहीं हुआ करते। अरे भाई, जब वह व्यक्ति ही करोड़पति नहीं होगा जिसके करोड़ रुपए बैंक में जमा हैं, तो फिर और कौन करोड़पति होगा? पर भाई, बात यह है कि उसके करोड़पति होने पर भी हमारा मन उसे करोड़पति मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि रिक्शा वाला करोड़पति हो, यह बात हमारे चित्त को सहज स्वीकार नहीं होती। आज तक हमने जिन्हें करोड़पति माना है उनमें से किसी को भी रिक्शा चलाते नहीं देखा, और करोड़पति रिक्शा चलाए यह हमें अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हमारा मन ही कुछ इस प्रकार का बन गया है। कौन करोड़पति है और कौन नहीं है, यह जानने के लिए आज तक कोई किसी की तिजोरी के नोट गिनने तो गया नहीं, यदि जाएगा भी तो बताएगा कौन? बस बाहरी ही तामझाम देखकर ही हम किसी को भी करोड़पति मान लेते हैं। 10-5 नौकर चाकर, मुनीम गुमास्ते और बंगला, मोटर कार, कल कारखाने देखकर ही हम किसी को भी करोड़पति मान लेते हैं, पर यह कोई नहीं जानता कि जिसे हम करोड़पति समझ रहे हैं, हो सकता है कि वह करोड़ों का कर्जदार हो। बैंक से करोड़ों रुपए उधार लेकर कल कारखाने खुल जाते हैं और बाहरी ठाट बाट देखकर अन्य लोग भी सेठ जी के पास पैसे जमा कराने लगते हैं। इस प्रकार गरीबों, विधवाओं, ब्रह्मचारियों के करोड़ों के ठाट बाट से हम उसे करोड़पति मान लेते हैं। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिसे हम करोड़पति साहूकार मान रहे हैं वह लोगों के करोड़ों रुपए पचाकर दिवाला निकालने की योजना बना रहा हो। ठीक यही बात सभी आत्माओं को परमात्मा मानने के संदर्भ में भी है। हमारा मन इन चलते फिरते, खाते पीते, रोते गाते चेतन आत्माओं को परमात्मा मानने को तैयार नहीं होता, भगवान मानने को तैयार नहीं होता। हमारा मन कहता है कि यदि हम भगवान होते तो फिर दर-दर की ठोकर क्यों खाते फिरते। अज्ञानांधकार में डूबा हमारा अंतर बोलता है कि हम भगवान नहीं हैं, हम तो दीनहीन प्राणी हैं, क्योंकि भगवान दीनहीन नहीं होते और दीनहीन भगवान नहीं होते। अब तक हमने भगवान के नाम पर मंदिरों में विराजमान उन प्रतिमाओं के ही भगवान के रूप में दर्शन किए हैं जिनके सामने हजारों लोग मस्तक टेकते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। यही कारण है कि हमारा मन डांटे फटकारे जाने वाले जन सामान्य को भगवान मानने को तैयार नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये भी कोई भगवान हो सकते हैं क्या? भगवान तो वे हैं जिनकी पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है। सच बात तो यह है कि हमारा मन ही कुछ ऐसा बन गया है कि उसे यह स्वीकार नहीं कि कोई दीनहीन जन भगवान बन जावे। अपने आराध्य को दीनहीन दशा में देखना भी हमें अच्छा नहीं लगता। भाई, भगवान दो तरह के होते हैं। एक तो वे अरहंत और सिद्ध परमात्मा जिनकी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान हैं, और उन मूर्तियों के माध्यम से हम उन मूर्तिमान परमात्मा की उपासना करते हैं, पूजन भक्ति करते हैं। जिस पथ पर वे चलते हैं उस पथ पर चलने का संकल्प करते हैं, भावना भाते हैं। ये अरहंत और सिद्ध कार्य परमात्मा कहलाते हैं। दूसरे देह देवल में विराजमान निज भगवान आत्मा भी परमात्मा है, भगवान है। इसे कारण परमात्मा कहा जाता है। जो भगवान मूर्तियों के रूप में मंदिरों में विराजमान हैं, वे हमारे पूज्य हैं, परम पूज्य हैं। अतः हम उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। किंतु देह देवल में विराजमान निज भगवान आत्मा श्रद्धेय हैं, ध्येय हैं, परम ज्ञेय हैं। अतः निज भगवान को जानना, पहचानना और उसका ध्यान करना ही उसकी आराधना है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की उत्पत्ति इस निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही होती है, क्योंकि निश्चय से निज भगवान आत्मा को निज जानना ही सम्यक ज्ञान है। उसे ही निज मानना, यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति होना सम्यक दर्शन है, और उसका ही ध्यान करना, उसी में जम जाना, रम जाना, लीन हो जाना सम्यक चारित्र है। अष्ट द्रव्य से पूजन मंदिर में विराजमान पर भगवान की जाती है, और ध्यान शरीर रूपी मंदिर में विराजमान निज भगवान आत्मा का किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति निज आत्मा को भगवान मानकर मंदिर में विराजमान भगवान के समान स्वयं की भी अष्ट द्रव्य से पूजन करने लगे तो उसे व्यवहार विहीन ही माना जाएगा। यह व्यवहार कुशल नहीं अपितु व्यवहार मूढ़ ही है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आत्मोपलब्धि के लिए ध्यान भी मंदिर में विराजमान भगवान का ही करता रहे तो उसे भी विकल्पों की ही उत्पत्ति होती रहेगी। निर्विकल्प आत्मानुभूति कभी नहीं होगी, क्योंकि निर्विकल्प आत्मानुभूति निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही होती है। निर्विकल्प आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की उत्पत्ति भी नहीं होगी। इस प्रकार उसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग का आरंभ ही नहीं होगा। जिस प्रकार वह रिक्शा वाला बालक रिक्शा चलाते हुए भी करोड़पति है, उसी प्रकार दीनहीन हालत में होने पर भी हम सभी स्वभाव से ज्ञानानंद स्वभावी भगवान हैं, कारण परमात्मा हैं। यह जानना मानना उचित ही है। इस संदर्भ में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत में अभी किसका राज है? कांग्रेस का। क्या कहा? कांग्रेस का। नहीं भाई, यह ठीक नहीं है। कांग्रेस तो एक पार्टी है। भारत में राज तो जनता जनार्दन का है, क्योंकि जनता जिसे चुनती है वही भारत का शासन चलाता है। अतः राज तो जनता जनार्दन का ही है। उक्त संदर्भ में जब हम जनता को जनार्दन यानी भगवान कहते हैं तो कोई नहीं कहता कि जनता तो जनता है, वह जनार्दन अर्थात भगवान कैसे हो सकती है। पर जब तात्विक चर्चा में यह कहा जाता है कि हम सभी भगवान हैं, तो हमारे चित्त में अनेक प्रकार की शंकाएं आशंकाएं खड़ी हो जाती हैं। पर भाई गहराई से विचार करें तो स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही है, इसमें शंका आशंकाओं को कोई स्थान नहीं है। यदि यह बात है तो फिर ये ज्ञान नंद स्वभावी भगवान आत्मा वर्तमान में अनंत दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे भाई, ये सब भूले हुए भगवान हैं, स्वयं को स्वयं की सामर्थ्य को भूल गए हैं, इसी कारण सुख स्वभावी होकर भी अनंत दुखी हो रहे हैं। इनके दुख का मूल कारण स्वयं को नहीं जानना नहीं पहचानना ही है। जब ये स्वयं को जानेंगे पहचानेंगे एवं स्वयं में ही जम जाएंगे रम जाएंगे तब स्वयं ही अनंत सुखी भी हो जाएंगे। जिस प्रकार वह रिक्शा चलाने वाला बालक करोड़पति होने पर भी यह नहीं जानता है कि मैं स्वयं करोड़पति हूं, इसी कारण दरिद्रता का दुख भोग रहा है। यदि उसे यह पता चल जावे कि मैं करोड़पति हूं, मेरे करोड़ रुपए बैंक में जमा हैं, तो उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार जब तक यह आत्मा स्वयं के परमात्मा स्वरूप को नहीं जानता पहचानता है तभी तक अनंत दुखी है। जब तक यह आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप को भली भांति जान लेगा पहचान लेगा तो इसके दुख दूर होने में भी देर न लगेगी। कंगाल के पास करोड़ों का हीरा हो पर वह उसे कांच का टुकड़ा समझता हो या चमकदार पत्थर मानता हो तो उसकी दरिद्रता जाने वाली नहीं है, पर यदि वह उसकी सही कीमत जान ले तो दरिद्रता एक क्षण भी उसके पास टिक नहीं सकती, उसे विदा होना ही होगा। इसी प्रकार यह आत्मा स्वयं भगवान होने पर भी यह नहीं जानता कि मैं स्वयं भगवान हूं, यही कारण है कि यह अनंत काल से अनंत दुख उठा रहा है। जिस दिन यह आत्मा यह जान लेगा कि मैं स्वयं भगवान ही हूं उस दिन उसके दुख दूर होते देर न लगेगी। इससे यह बात सहज सिद्ध होती है कि होने से भी अधिक महत्व जानकारी होने का है, ज्ञान होने का है। होने से क्या होता है? होने को तो यह आत्मा अनादि से ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा ही है, पर इस बात की जानकारी न होने से ज्ञान न होने से ज्ञानानंद स्वभावी भगवान होने का कोई लाभ इसे प्राप्त नहीं हो रहा है। होने को तो वह रिक्शा चलाने वाला बालक भी गर्भ श्रीमंत है, जन्म से ही करोड़पति है, पर पता न होने से दो रोटियों की खातिर उसे रिक्शा चलाना पड़ रहा है। यही कारण है कि जिनागम में सम्यक ज्ञान के गीत दिल खोल कर गाए हैं। कहा गया है कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। इस जगत में ज्ञान के समान अन्य कोई भी पदार्थ सुख देने वाला नहीं है। यह ज्ञान जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग को दूर करने के लिए परम अमृत है, सर्वोत्कृष्ट औषधि है। और भी देखिए, जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जय हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे हैं। आज तक जितने भी जीव अनंत सुखी हुए हैं अर्थात मोक्ष गए हैं या जा रहे हैं अथवा भविष्य में जावेंगे, वह सब ज्ञान का ही प्रताप है। ऐसा मुनियों के नाथ जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। सम्यक ज्ञान की तो अनंत महिमा है ही, पर सम्यक दर्शन की महिमा जिनागम में उससे भी अधिक बताई गई है, गाई गई है। क्यों और कैसे? मान लो रिक्शा चलाने वाला वह करोड़पति बालक अब 25 वर्ष का युवक हो गया है, उसके नाम जमा करोड़ रुपयों की अवधि समाप्त हो गई है, फिर भी कोई व्यक्ति बैंक से रुपए लेने नहीं आया, अतः बैंक ने समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई कि अमुक व्यक्ति के इतने रुपए बैंक में जमा हैं, वह एक माह के भीतर आकर ले जावे। यदि कोई व्यक्ति एक माह के भीतर नहीं आया तो लावारिस समझकर रुपए सरकारी खजाने में जमा करा दिए जाएंगे। उस समाचार को उस युवक ने भी पढ़ा और उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। पर उसकी वह प्रसन्नता क्षणिक साबित हुई, क्योंकि अगले ही क्षण उसके हृदय में संशय के बीज अंकुरित हो गए। वह सोचने लगा कि मेरे नाम इतने रुपए बैंक में कैसे हो सकते हैं, मैंने तो कभी जमा कराए ही नहीं, मेरा तो किसी बैंक में कोई खाता भी नहीं है। फिर भी उसने वह समाचार दोबारा बारीकी से पढ़ा तो पाया कि वह नाम तो उसी का है, पिता के नाम के स्थान पर भी उसी के पिता का नाम अंकित है। कुछ आशा जागृत हुई, किंतु अगले क्षण ही उसे विचार आया कि हो सकता है इसी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति हो, और सहज संयोग से ही उसके पिता का नाम भी यही हो। इस प्रकार वह फिर शंकाशील हो उठा। इस प्रकार जानकर भी उसे प्रतीत नहीं हुई, इस बात का विश्वास जागृत नहीं हुआ कि ये रुपए मेरे ही हैं। अतः जान लेने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि प्रतीति बिना, विश्वास बिना, जान लेने मात्र से भी कोई लाभ नहीं होता। अतः ज्ञान से भी अधिक महत्व श्रद्धान का है, विश्वास का है, प्रतीति का है। इसी प्रकार शास्त्रों में पढ़कर हम सब यह जान तो लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, अप्पा सो परम अप्पा, पर अंतर में यह विश्वास जागृत नहीं होता कि मैं स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हूं, परमात्मा हूं, भगवान हूं। यही कारण है कि यह बात जान लेने पर भी कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, सम्यक श्रद्धान बिना दुख का अंत नहीं होता, चतुर्गति भ्रमण समाप्त नहीं होता, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। समाचार पत्र में उक्त समाचार पढ़कर वह युवक अपने साथियों को भी बताता है, उन्हें समाचार दिखाकर कहता है कि देखो मैं करोड़पति हूं, अब तुम मुझे गरीब रिक्शे वाला नहीं समझना। इस प्रकार कहकर वह अपना और अपने साथियों का मनोरंजन करता है, एक प्रकार से स्वयं अपनी हंसी उड़ाता है। इसी प्रकार शास्त्रों में से पढ़ पढ़कर हम स्वयं अपने साथियों को भी सुनाते हैं, कहते हैं देखो हम सभी स्वयं भगवान हैं, दीनहीन मनुष्य नहीं। इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चाओं द्वारा हम स्वयं का और समाज का मनोरंजन तो करते हैं, पर सम्यक श्रद्धान के अभाव में भगवान होने का सही लाभ प्राप्त नहीं होता, आत्मानुभूति नहीं होती, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती, आकुलता समाप्त नहीं होती। इस प्रकार अज्ञानी जनों की आध्यात्मिक चर्चा भी आत्मानुभूति के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना, सम्यक श्रद्धान के बिना मात्र बौद्धिक व्यायाम बनकर रह जाती है। समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाने के उपरांत भी जब कोई व्यक्ति पैसे लेने बैंक में नहीं आया तो बैंक वालों ने रेडियो स्टेशन से घोषणा कराई। रेडियो स्टेशन को भारत में आकाशवाणी कहते हैं। अतः आकाशवाणी हुई कि अमुक व्यक्ति के इतने रुपए बैंक में जमा हैं, वह एक माह के भीतर ले जावे, अन्यथा लावारिस समझकर सरकारी खजाने में जमा करा दिए जाएंगे। आकाशवाणी की उस घोषणा को रिक्शे पर बैठे बैठे उसने भी सुनी, अपने साथियों को भी सुनाई, पर विश्वास के अभाव में कोई लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार अनेक प्रवक्ताओं से इस बात को सुनकर भी कि हम सभी स्वयं भगवान हैं, विश्वास के अभाव में बात वहीं की वहीं रही। जीवन भर जिन वाणी सुनकर भी, पढ़कर भी, आध्यात्मिक चर्चाएं करके भी आत्मानुभूति से अछूते रह गए। समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं आकाशवाणी से प्रसारित उक्त समाचार की ओर जब स्वर्गीय सेठ जी के उन अभिन्न मित्र का ध्यान गया जिन्हें उन्होंने मरते समय उक्त रहस्य की जानकारी दी थी, तो वे तत्काल उस युवक के पास पहुंचे और बोले, बेटा तुम रिक्शा क्यों चलाते हो? उसने उत्तर दिया, यदि रिक्शा न चलाएं तो खाएंगे क्या? उन्होंने समझाते हुए कहा, भाई तुम तो करोड़पति हो, तुम्हारे तो करोड़ों रुपए बैंक में जमा हैं। अत्यंत गमगीन होते हुए युवक कहने लगा, चाचा जी आपसे ऐसी आशा नहीं थी, सारी दुनिया तो हमारा मजाक उड़ा ही रही है, पर आप तो बुजुर्ग हैं, मेरे पिता के बराबर हैं, आप भी वह अपनी बात समाप्त ही न कर पाया था कि उसके माथे पर हाथ फेरते हुए अत्यंत स्नेह से वे कहने लगे, नहीं भाई, मैं तेरी मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। तू सचमुच ही करोड़पति है। जो नाम समाचार पत्रों में छप रहा है वह तेरा ही नाम है। अत्यंत विनयपूर्वक वह बोला, ऐसी बात कहकर आप मेरे चित्त को व्यर्थ ही अशांत न करें। मैं मेहनत मजदूरी करके दो रोटियां पैदा करता हूं और आराम से जिंदगी बसर कर रहा हूं। मेरी महत्वाकांक्षा को जगाकर आप मेरे चित्त को क्यों उद्वेलित कर रहे हैं? मैंने तो कभी कोई रुपए बैंक में जमा कराए ही नहीं, अतः मेरे रुपए बैंक में जमा कैसे हो सकते हैं? अत्यंत गदगद होते हुए वे कहने लगे, भाई, तुम्हें पैसे जमा कराने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हारे पिताजी स्वयं 20 वर्ष पहले तुम्हारे नाम 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा करा गए हैं, जो अब ब्याज सहित 10 करोड़ से भी अधिक हो गए होंगे। मरते समय यह बात वे मुझे बता गए थे। यह बात सुनकर वह एकदम उत्तेजित हो गया। थोड़ा सा विश्वास उत्पन्न होते ही उसमें करोड़पतियों के लक्षण उभरने लगे। वह एकदम गर्म होते हुए बोला, यदि यह बात सत्य है तो आपने अभी तक हमें क्यों नहीं बताया? वे समझाते हुए कहने लगे, उत्तेजित क्यों होते हो? अब तो बता दिया, पीछे की जाने दो, अब आगे की सोचो।
पीछे की क्यों जाने दो?
हमारे करोड़ों रुपए बैंक में पड़े रहे और हम 2 रोटियों के लिए मोहताज हो गए। हम रिक्शा चलाते रहे और आप देखते रहे। यह कोई साधारण बात नहीं है जो ऐसे ही छोड़ दी जावे। आपको इसका जवाब देना ही होगा। तुम्हारे पिताजी मना कर गए थे। आखिर क्यों? इसलिए कि 20 वर्ष पहले तुम्हें रुपए तो मिल नहीं सकते थे। पता चलने पर तुम रिक्शा भी न चला पाते और भूखों मर जाते। पर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? इसलिए कि नाबालिगी की अवस्था में कहीं तुम यह संपत्ति बर्बाद न कर दो और फिर जीवन भर के लिए कंगाल हो जाओ। समझदार हो जाने पर तुम्हें ब्याज सहित 8-10 करोड़ रुपए मिल जावें और तुम आराम से रह सको। तुम्हारे पिताजी ने यह सब तुम्हारे हित में ही किया है, अतः उत्तेजना में समय खराब मत करो, आगे की सोचो। इस प्रकार संपत्ति संबंधी सच्ची जानकारी और उस पर पूरा विश्वास जागृत हो जाने पर उस रिक्शे वाले युवक का मानस एकदम बदल जाता है। दरिद्रता के साथ का एकत्व टूट जाता है एवं मैं करोड़पति हूं ऐसा गौरव का भाव जागृत हो जाता है। आजीविका की चिंता न मालूम कहां चली जाती है। चेहरे पर संपन्नता का भाव स्पष्ट झलकने लगता है। इसी प्रकार शास्त्रों के पठन, प्रवचनों के श्रवण और अनेक युक्तियों के अवलंबन से ज्ञान में बात स्पष्ट हो जाने पर भी अज्ञानी जनों को इस प्रकार का श्रद्धान उदित नहीं होता कि ज्ञान का घनपिंड, आनंद का रसकंद, शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोदाम भगवान आत्मा मैं स्वयं ही हूं। यही कारण है कि श्रद्धान के अभाव में उक्त ज्ञान का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। काल लब्धि आने पर किसी आसन्न भव्य जीव को परम भाग्योदय से किसी आत्मानुभवी ज्ञानी धर्मात्मा का सहज समागम प्राप्त होता है और वह ज्ञानी धर्मात्मा उसे अत्यंत वात्सल्य भाव से समझाता है कि हे आत्मन, तू स्वयं भगवान है, तू अपनी शक्तियों को पहचान, पर्याय की पामरता का विचार मत कर, स्वभाव के सामर्थ्य को देख, संपूर्ण जगत पर से दृष्टि हटा और स्वयं में ही समा जा, उपयोग को यहां वहां न भटका, अंतर में जा, तुझे निज परमात्मा के दर्शन होंगे। ज्ञानी गुरु की करुणा विगलित वाणी सुनकर वह निकट भव्य जीव कहता है, प्रभो, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं भगवान कैसे हो सकता हूं? मैंने तो जिनागम में बताए भगवान बनने के उपाय का अनुसरण आज तक किया ही नहीं है। न जप किया, न तप किया, न व्रत पाले और न स्वयं को जाना पहचाना। ऐसी अज्ञानी असंयत दशा में रहते हुए मैं भगवान कैसे बन सकता हूं? अत्यंत स्नेहपूर्वक समझाते हुए ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, भाई, ये बनने वाले भगवान की बात नहीं है, यह तो बने बनाए भगवान की बात है। स्वभाव की अपेक्षा तुझे भगवान बनना नहीं है, अपितु स्वभाव से तू बना बनाया भगवान ही है। ऐसा जानना, मानना और अपने में ही जम जाना, रम जाना पर्याय में भगवान बनने का उपाय है। तू एक बार सच्चे दिल से, अंतर की गहराई से इस बात को स्वीकार तो कर। अंतर की स्वीकृति आते ही तेरी दृष्टि पर पदार्थों से हटकर सहज ही स्वभाव सन्मुख होगी, ज्ञान भी अंतरोन्मुख होगा और तू अंतर में ही समा जाएगा, लीन हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा। ऐसा होने पर तेरे अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा दरिया उमड़ेगा कि तू निहाल हो जावेगा, कृतकृत्य हो जावेगा। एक बार ऐसा स्वीकार करके तो देख। यदि ऐसी बात है तो आज तक किसी ने क्यों नहीं बताया? जाने भी दे इस बात को, आगे की सोच।
क्यों जाने दे? इस बात को जाने बिना हम अनंत दुख उठाते रहे, स्वयं भगवान होकर भी भोगों के भिखारी बने रहे और किसी ने बताया तक नहीं।
अरे भाई, जगत को पता हो तो बताए, और ज्ञानी तो बताते ही रहते हैं, पर कौन सुनता है उनकी? काल लब्धि आए बिना किसी का ध्यान ही नहीं जाता इस ओर। सुन भी लेते हैं तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं, ध्यान नहीं देते। समय से पूर्व बताने से किसी को कोई लाभ भी नहीं होता। अतः अब जाने भी दो पुरानी बातों को, आगे की सोचो। स्वयं के परमात्मा स्वरूप को पहचानो, स्वयं के परमात्मा स्वरूप को जानो और स्वयं में समा जाओ। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। कहते कहते गुरु स्वयं में समा जाते हैं और वह भव्यात्मा भी स्वयं में समा जाता है। जब उपयोग बाहर आता है तो उसके चेहरे पर अपूर्व शांति होती है। संसार की थकान पूर्णतः उतर चुकी होती है। पर्याय की पामरता का कोई चिन्ह चेहरे पर नहीं होता। स्वभाव की सामर्थ्य का गौरव अवश्य झलकता है। आत्मज्ञान श्रद्धान एवं आंशिक लीनता से आरंभ मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ वह भव्यात्मा चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रों जैसे भोगों को भी तुच्छ समझने लगता है। कहा भी है, चक्रवर्ती की संपदा अर इंद्र सारिखे भोग, कागवीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। पिता के मित्र रिक्शे वाले युवक से यह बात रिक्शा स्टैंड पर ही कर रहे थे। उनकी यह सब बात रिक्शे पर बैठे बैठे ही हो रही थी। इतने में एक सवारी ने आवाज दी, ए रिक्शा वाले, स्टेशन चलेगा? उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, नहीं। क्यों? चलो ना भाई, जरा जल्दी जाना है। 2 रुपए की जगह 5 रुपए ले लेना, पर चलो, जल्दी चलो। नहीं, नहीं जाना। एक बार कह दिया ना?
कह दिया, पर
उसकी बात जाने दो। अब मैं आपसे ही पूछता हूं कि क्या वह अब भी सवारी ले जाएगा? यदि ले जाएगा तो कितने में?
10 रुपए में?
20 रुपए में?
क्या कहा?
कितने ही रुपए दो, पर अब वह रिक्शा नहीं चलाएगा।
क्यों?
क्योंकि अब वह करोड़पति हो गया है।
अरे भाई, अभी तो मात्र पता ही चला है, अभी रुपए हाथ में कहां आए हैं।
कुछ भी हो, अब उससे रिक्शा नहीं चलेगा, क्योंकि करोड़पति रिक्शा नहीं चलाया करते। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को आत्मानुभव पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो जाता है, तब उसके आचरण में भी अंतर आ ही जाता है। यह बात अलग है कि वह तत्काल पूर्ण संयमी या देश संयमी नहीं हो जाता, फिर भी उसके जीवन में अन्याय, अभक्ष्य एवं मिथ्यात्व पोषक क्रियाएं नहीं रहती हैं। उसका जीवन शुद्ध सात्विक हो जाता है, उससे हीन काम नहीं होते। वह युवक सवारी लेकर स्टेशन तो नहीं जावेगा, पर उस सेठ के घर रिक्शा वापिस देने और किराया देने तो जावेगा ही, जिसका रिक्शा वह किराए पर लाया था। प्रतिदिन शाम को रिक्शा और किराए के 10 रुपए दे आने पर ही उसे अगले दिन रिक्शा किराए पर मिलता था। यदि कभी रिक्शा और किराया देने न जा पावे तो सेठ घर पर आधमकता था, मोहल्ले वालों के सामने उसकी इज्जत उतार देता था।
आज वह सेठ के घर रिक्शा देने भी न जावेगा, उसे वहीं ऐसा ही छोड़कर चल देगा। तब फिर क्या वह सेठ उसके घर जाएगा? हाँ जाएगा, अवश्य जाएगा, पर रिक्शा लेने नहीं, रुपए लेने नहीं, अपनी लड़की का रिश्ता लेकर जाएगा, क्योंकि यह पता चल जाने पर कि इसके करोड़ों रुपए बैंक में जमा है, कौन उसे अपनी कन्या देकर कृतार्थ न होना चाहेगा। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को आत्मानुभव होता है तो उसके अंतर की हीन भावना तो समाप्त हो ही जाती है, पर सातिशय पुण्य के प्रताप से लोक में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लोक भी उसके सद्व्यवहार से प्रभावित होता है। ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्ञात हो जाने पर भी जिस प्रकार कोई असभ्य व्यक्ति उस रिक्शे वाले से रिक्शे वालों जैसा व्यवहार भी कदाचित कर सकता है, उसी प्रकार कुछ अज्ञानी जन उन ज्ञानी धर्मात्माओं से भी कदाचित असद्व्यवहार कर सकते हैं, करते भी देखे जाते हैं, पर यह बहुत कम होता है। यद्यपि अभी वह वही मैला कुचैला फटा कुर्ता पहने है, मकान भी टूटा फूटा ही है, क्योंकि ये सब तो तब बदलेंगे जब रुपए हाथ में आ जाएंगे। कपड़े और मकान श्रद्धा ज्ञान से नहीं बदल जाते, उनके लिए तो पैसे चाहिए, पैसे। तथापि उसके चित्त में आप कहीं भी दरिद्रता की हीन भावना का नामो निशान भी नहीं पाएंगे। उसी प्रकार जीवन तो सम्यक चारित्र होने पर बदलेगा। अभी तो असंयम रूप व्यवहार ही ज्ञानी धर्मात्मा के देखा जाता है, पर उनके चित्त में रंच मात्र भी हीन भावना नहीं रहती, वे स्वयं को भगवान ही अनुभव करते हैं। जिस प्रकार उस युवक के श्रद्धा और ज्ञान में तो यह बात एक क्षण में आ गई कि मैं करोड़पति हूं, पर करोड़पतियों जैसे रहन सहन में अभी वर्षों लग सकते हैं। पैसा हाथ में आ जाए तब मकान बनना आरंभ हो, उसमें भी समय तो लगेगा ही। उस युवक को अपना जीवन स्तर उठाने की जल्दी तो है, पर अधीरता नहीं, क्योंकि जब पता चल गया है तो रुपए भी अब मिलेंगे ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बरसों लगने वाले नहीं हैं। उसी प्रकार श्रद्धा और ज्ञान तो क्षणभर में परिवर्तित हो जाते हैं, पर जीवन में संयम आने में समय लग सकता है। संयम धारण करने की जल्दी तो प्रत्येक ज्ञानी धर्मात्मा को रहती ही है, पर अधीरता नहीं होती, क्योंकि जब सम्यक दर्शन ज्ञान और संयम की रुचि यानी अंश जग गई है तो इसी भाव में, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, उसमें नहीं तो उससे अगले भाव में संयम भी आएगा ही, अनंत काल यों ही जाने वाला नहीं है। अतः हम सभी का यह परम पावन कर्तव्य है कि हम सब स्वयं को सही रूप में जाने, सही रूप में पहचाने, इस बात का गहराई से अनुभव करें कि स्वभाव से तो हम सभी सदा से ही भगवान ही हैं, इसमें शंका आशंका के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। रही बात पर्याय की, पामरता की, सो जब हम अपने परमात्म स्वरूप का सम्यक ज्ञान कर उसी में अपनापन स्थापित करेंगे, अपने ज्ञानोपयोग प्रगट ज्ञान को भी संपूर्णतः उसी में लगा देंगे, स्थापित कर देंगे और उसी में लीन हो जाएंगे, जम जाएंगे, रम जाएंगे, समा जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, तो पर्याय में भी परमात्मा अरहंत सिद्ध बनते देर न लगेगी। अरे भाई, जैन दर्शन के इस अद्भुत परम सत्य को एक बार अंतर की गहराई से स्वीकार तो करो कि स्वभाव से हम सभी भगवान ही हैं, पर और पर्याय से अपनापन तोड़कर एक बार द्रव्य स्वभाव में अपनापन स्थापित तो करो, फिर देखना अंतर में कैसी क्रांति होती है, कैसी अद्भुत और अपूर्व शांति उपलब्ध होती है, अतीन्द्रिय आनंद का कैसा झरना झरता है। इस अद्भुत सत्य का आनंद मात्र बातों से आने वाला नहीं है, अंतर में इस परम सत्य के साक्षात्कार से ही अतीन्द्रिय आनंद का दरिया उमड़ेगा, उमड़ेगा, अवश्य उमड़ेगा। एक बार सच्चे हृदय से संपूर्ण समर्पित होकर निज भगवान आत्मा की आराधना तो करो, फिर देखना क्या होता है। बातों में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। अतः यह मंगल भावना भाते हुए विराम लेता हूँ कि सभी आत्माएं स्वयं के परमात्मा स्वरूप को जानकर, पहचानकर, स्वयं में ही जमकर, रमकर अनंत सुख शांति को शीघ्र ही प्राप्त करें। अध्याय दूसरा, अपने में अपनापन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। अनादिकालीन अनंत दुख को दूर करने का एकमात्र उपाय है, अतः हमें इन्हें समझने में पूरी शक्ति लगाना चाहिए। इन्हें प्राप्त करने के लिए प्राणपण से जुट जाना चाहिए। इनके स्वरूप को समझने के लिए हमें जैन दर्शन में प्रतिपादित तत्व व्यवस्था को समझना होगा, क्योंकि तत्वार्थ के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। तत्वार्थ सात होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव तत्व अनादि निधन द्रव्य रूप भगवान है और मोक्ष तत्व सादि प्रकट दशा रूप भगवान है। भगवान स्वभावी आत्मा का प्रकट रूप से पर्याय में भगवान बनना ही मोक्ष प्राप्त करना है। यही कारण है कि जैन दर्शन कहता है कि स्वभाव से तो हम सभी भगवान हैं ही, पर यदि अपने को जाने, पहचाने और अपने में ही जम जाएं, रम जाएं, तो प्रकट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकते हैं। अपने को पहचानना, जानना ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, तथा अपने में ही जम जाना, रम जाना सम्यक चारित्र है। इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक रूपता ही मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का सच्चा उपाय है। यद्यपि यह भगवान आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, तथापि मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत जिन गुणों की चर्चा जिनागम में सर्वाधिक प्राप्त है, उनमें श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुण प्रमुख हैं। इनमें ज्ञान गुण का कार्य सत्यासत्य का निर्णय करता है, श्रद्धा गुण का कार्य अपने और पराये की पहचान कर अपने में अपनापन स्थापित करना है, और अच्छे बुरे का निर्णय हम अपने राग के अनुसार करते हैं। ध्यान रहे, राग चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। इस जगत में कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं है, उनमें अच्छे बुरे का निर्णय हम अपने रागानुसार ही करते हैं। रंग न गोरा अच्छा होता है न सांवला, जिसके मन जो भा जाए उसके लिए वही अच्छा है। हम गोरे रंग के लिए तरसते हैं और गोरी चमड़ी वाले यूरोपियन घंटों नंगे बदन धूप में इसलिए पड़े रहते हैं कि उनका रंग थोड़ा बहुत हम जैसा सांवला हो जावे। दूसरों की बात जाने भी दें, हम स्वयं अपना चेहरा गोरा और बाल काले पसंद करते हैं। जरा विचार तो करो, यदि चेहरे जैसे बाल और बालों जैसा चेहरा हो जावे तो क्या हो। तात्पर्य यह है कि जगत में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, अच्छे बुरे की कल्पना हम स्वयं अपने रागानुसार ही करते हैं। इस जगत में न अच्छे की कीमत है न सच्चे की, अपनापन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वस्व समर्पण अपनों के प्रति ही होता है। यही कारण है कि मुक्ति के मार्ग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा गुण है। श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन है। पर और पर्याय से भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करना ही सम्यक दर्शन है। निज भगवान आत्मा को निज जानना ही सम्यक ज्ञान है, और निज भगवान आत्मा में ही जमना, रमना सम्यक चारित्र है। यहाँ आप कह सकते हैं कि विद्वानों का काम तो सच्चाई और अच्छाई की कीमत बताना है, और आप कह रहे हैं कि इस जगत में न सच्चाई की कीमत है और न अच्छाई की। भाई, हम क्या कह रहे हैं, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। एक करोड़पति सेठ था, उसका एक इकलौता बेटा था। कैसा? जैसे कि करोड़पतियों के होते हैं, सातों व्यसनों में पारंगत। उसके पड़ोस में एक गरीब व्यक्ति रहता था, उसका भी एक बेटा था। कैसा? जैसा कि सेठ अपने बेटे को चाहता था। सर्वगुण संपन्न, पढ़ने लिखने में होशियार, व्यसनों से दूर, सदाचारी, विनयशील, सेठ रोज सुबह उठता तो पड़ोसी के बेटे की भगवान जैसी स्तुति करता और अपने बेटे को हजार गालियां देता, कहता, देखो वह कितना होशियार है। प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर जाता है, समय पर सोकर उठता है, और एक तू है कि अभी तक सो रहा है। अरे नालायक, मेरे घर में पैदा हो गया है सो गुलछर्रे उड़ा रहा है। कहीं और पैदा होता तो भूखो मरता, भूखो। अरे अब आगे।
बीच में ही बात काटते हुए पुत्र कहता, पिताजी और चाहे जो कुछ कहो पर अभागा नहीं कह सकते।
क्यों? क्योंकि जिसे आप जैसा कमाऊ बाप मिला हो वह अभागा कैसे हो सकता है?
अभागे तो आप हैं जिसे मुझ जैसा गमाऊ बेटा मिला है।
एक दिन पड़ोसी का बेटा स्कूल नहीं गया। उसे घर पर देखकर सेठ ने कहा, बेटा आज स्कूल क्यों नहीं गए?
बच्चे ने उत्तर दिया, मास्टर जी कहते हैं कि स्कूल में ड्रेस पहनकर आओ और पुस्तकें लेकर आओ। मैं पापा से कहता हूं तो उत्तर मिलता है कि कल ला देंगे, पर उनका कल कभी आता ही नहीं है। आज एक माह हो गया, अतः आज मैं स्कूल ही नहीं गया हूं।
पुचकारते हुए सेठ बोला, बेटा चिंता की कोई बात नहीं, अपना वो नालायक पप्पू है ना, वह हर माह नई ड्रेस सिलाता है और पुरानी फेंक देता है, पुस्तकें भी हर माह फाड़ता है और नई खरीद लाता है। बहुत सी ड्रेसें और पुस्तकें पड़ी हैं, ले जाओ।
अब जरा विचार कीजिए, सेठ जिसकी भगवान जैसी स्तुति करता है उसे अपने नालायक बेटे के उतारन के कपड़े और फटी पुस्तकें देने का भाव आता है और अपने उस नालायक बेटे को करोड़ों की संपत्ति दे जाने का पक्का विचार है। कभी स्वप्न में भी यह विचार नहीं आया कि थोड़ी बहुत किसी और को भी दे दूं। अब आप ही बताइए कि जगत में अपने की कीमत है या अच्छे की, सच्चे की? अच्छा और सच्चा तो पड़ोसी का बेटा है, पर वह अपना नहीं, अतः उसके प्रति राग भी सीमित ही है, असीम नहीं। अपना बेटा यद्यपि अच्छा भी नहीं है, सच्चा भी नहीं है, पर अपना है। अपना होने से उससे राग भी असीम है, अनंत है। इससे सिद्ध होता है कि अपनापन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज तक इस आत्मा ने देहादि पर पदार्थों में ही अपनापन मान रखा है, अतः उन्हीं की सेवा में संपूर्णतः समर्पित है। निज भगवान आत्मा में एक क्षण को भी अपनापन नहीं आया है। यही कारण है कि उसकी अनंत उपेक्षा हो रही है। देह की संभाल में हम चौबीसों घंटे समर्पित हैं और भगवान आत्मा के लिए हमारे पास सही मायनों में एक क्षण भी नहीं है। भगवान आत्मा अनंत उपेक्षा का शिकार होकर सौतेला बेटा बनकर रह गया है। हम इस जड़ नश्वर शरीर के प्रति जितने सतर्क रहते हैं कि आत्मा के प्रति हमारी सतर्कता उसके सहस्त्रांश भी दिखाई नहीं देती। यदि यह जड़ शरीर अस्वस्थ हो जावे तो हम डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े जाते हैं, जो वह कहता है उसे अक्षरशः स्वीकार करते हैं। जैसा वह कहता है वैसे ही चलने को निरंतर तत्पर रहते हैं, उससे किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करते। यदि वह कहता है कि तुम्हें कैंसर है तो बिना मीन मेख किए स्वीकार कर लेते हैं। वह कहे ऑपरेशन अतिशीघ्र होना चाहिए और 1,00,000 रुपए खर्च होंगे तो हम कुछ भी आनाकानी नहीं करते, मकान बेचकर भी भरपूर सीजन के समय ऑपरेशन कराने को तैयार रहते हैं, डॉक्टर की भरपूर विनय करते हैं, लाखों रुपए देकर भी उनका आजीवन एहसान मानते हैं। पर जब आत्मा का डॉक्टर बताता है कि आपको मिथ्यात्व का भयंकर कैंसर हो गया है, उसका शीघ्र इलाज होना चाहिए, तो उसकी बात पर एक तो हम ध्यान ही नहीं देते और देते भी हैं तो हजार बहाने बनाते हैं। प्रवचन का समय अनुकूल नहीं है, हम बहुत दूर रहते हैं, काम के दिनों वीक डेज में कैसे आ सकते हैं, न मालूम कितने बहाने खड़े कर देते हैं। आखिर शरीर के इलाज की इतनी अपेक्षा और आत्मा के इलाज की इतनी उपेक्षा क्यों? इसका एकमात्र कारण शरीर में अपनापन और भगवान आत्मा में परायापन ही तो है। जब तक शरीर से अपनापन टूटेगा नहीं और भगवान आत्मा में अपनापन आएगा नहीं, तब तक शरीर की उपेक्षा और भगवान आत्मा के प्रति सर्वस्व समर्पण संभव नहीं है। सर्वस्व समर्पण के बिना आत्मदर्शन सम्यक दर्शन संभव नहीं है। यदि हमें आत्मदर्शन करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो देह के प्रति एकत्व तोड़ना ही होगा, आत्मा में एकत्व स्थापित करना ही होगा। देह से भिन्नता एवं आत्मा में अपनापन स्थापित करने के लिए देह की मलिनता और आत्मा की महानता के गीत गाने से काम नहीं चलेगा। देह के परायेपन और आत्मा के अपनेपन पर गहराई से मंथन करना होगा। पल रुधिर राध मल थैली, की कस बसा दी तैं मैली, नवद्वार बहे घिन कारी, अस देह करे किम यारी। कफ और चर्बी आदि से मैली यह देह मांस खून पीप आदि मलों की थैली है। इसमें नाक कान आंख नौ दरवाजे हैं, जिनसे निरंतर घृणास्पद पदार्थ बहते रहते हैं। हे आत्मन, तू इस प्रकार की घिनावनी देह से यारी क्यों करता है? इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिनमल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ज्ञेय है श्रद्धेय है, बस ध्येय भी वह आत्मा। इस देह की अपवित्रता की बात कहाँ तक कहें? इसके संयोग में जो भी वस्तु एक पल भर के लिए ही क्यों ना आए, वह भी मलिन हो जाती है, मल मूत्रमय हो जाती है, दुर्गंधमय हो जाती है। सब पदार्थों को पवित्र कर देने वाला जल भी इसका संयोग पाकर अपवित्र हो जाता है। कुएं के प्रासुक जल और अठपहरे शुद्ध घी में मर्यादित आटे से बना हलवा भी क्षणभर को पेट में चला जावे और तत्काल वमन हो जावे तो उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। ऐसी अपवित्र है यह देह, और इसमें रहने वाला भगवान आत्मा परम पवित्र पदार्थ है। आनंद का रस कंद सागर, शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। यह परम पवित्र भगवान आत्मा आनंद का रस कंद ज्ञान का घन पिंड है, शांति का सागर है, गुणों का गोदाम और अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। इस प्रकार हमने देह की अपवित्रता तथा भगवान आत्मा की पवित्रता और महानता पर बहुत विचार किया है, पढ़ा है, सुना है, पर देह से हमारा ममत्व रंच मात्र भी कम नहीं हुआ और आत्मा में रंच मात्र भी अपनापन नहीं आया। परिणाम स्वरूप हम वहीं के वहीं खड़े हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। देह से अपनापन नहीं टूटने से राग भी नहीं टूटता, क्योंकि जो अपना है वह कैसा भी क्यों न हो, उसे कैसे छोड़ा जा सकता। इसी प्रकार आत्मा में अपनापन स्थापित हुए बिना उससे अंतरंग स्नेह भी नहीं उमड़ता। अतः हमारे चिंतन का बिंदु आत्मा का अपनापन और देह का परायापन होना चाहिए। इसी से आत्मा में एकत्व स्थापित होगा, देह से भिन्नता भासित होगी। निज भगवान आत्मा में अपनापन ही सम्यक दर्शन है, और निज भगवान आत्मा से भिन्न देहादि पदार्थों में अपनापन ही मिथ्या दर्शन है। अपनेपन की महिमा अद्भुत है, अपनेपन के साथ अभूतपूर्व उल्लसित परिणाम उत्पन्न होता है। आप प्लेन में बैठे विदेश जा रहे हों, हजारों विदेशियों के बीच किसी भारतीय को देखकर आपका मन उल्लसित हो उठता है। जब आप उससे पूछते हैं कि आप कहां से आए हैं, तब वह यदि उसी नगर का नाम ले दे जिस नगर के आप हैं, तो आपका उल्लास द्विगुणित हो जाता है। यदि वह आपकी ही जाति का निकले तो फिर कहना ही क्या है। यदि वह दूसरी जाति, दूसरे नगर या दूसरे देश का निकले तो उत्साह ठंडा पड़ जाता है। इस उल्लास और ठंडेपन का एकमात्र कारण अपनेपन और परायेपन की अनुभूति ही तो है। अपने में अपनापन आनंद का जनक है, परायों में अपनापन आपदाओं का घर है। यही कारण है कि अपने में अपनापन ही साक्षात धर्म है और परायों में अपनापन महाधर्म है। अपने में से अपनापन खो जाना ही अनंत दुखों का कारण है, और अपने में अपनापन हो जाना ही अनंत सुख का कारण है। अनादिकाल से यह आत्मा अपने को भूलकर ही अनंत दुख उठा रहा है, और अपने को जानकर पहचानकर अपने में ही जमकर रमकर अनंत सुखी हो सकता है। दुखों से मुक्ति के मार्ग में अपने में अपनापन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक सेठ था और उसका एक दो ढाई वर्ष का इकलौता बेटा। घर के सामने खेलते खेलते वह कुछ आगे बढ़ गया। घर की खोज में वह दिग्भ्रमित हो गया और पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर बढ़ गया। बहुत खोजने पर भी उसे अपना घर नहीं मिला। घर वालों ने भी बहुत खोज की पर पार न पड़ी। वह रात उसे गली कूचों में ही रोते रोते बितानी पड़ी। प्रातः काल तक उसकी हालत ही बदल गई थी। कपड़े गंदे हो गए और चेहरा मलिन दीनहीन। बहुत कुछ प्रयत्नों के बाद भी न उसे घर मिला और न घर वालों को। वह भीख मांगकर पेट भरने के अतिरिक्त कोई रास्ता न रहा। थोड़ा बड़ा होने पर लोग कहने लगे, काम क्यों नहीं करता? आखिर एक हलवाई की दुकान पर बर्तन साफ करने का काम करने लगा। पुत्र के वियोग में सेठ का घर भी अस्त व्यस्त हो गया था। अब न किसी को खाने पीने में रस रह गया था और न आमोद प्रमोद का प्रसंग ही। घर में सदा मातम का वातावरण ही बना रहता। ऐसे घरों में घरेलू नौकर भी नहीं टिकते, क्योंकि वे भी तो हंसी खुशी के वातावरण में रहना चाहते हैं। अतः उनका चौका बर्तन करने वाला नौकर भी नौकरी छोड़कर चला गया था। अतः उन्हें एक घरेलू नौकर की आवश्यकता थी। आखिर उस सेठ ने उसी हलवाई से नौकर की व्यवस्था करने को कहा और वह 7-8 साल का बालक अपने ही घर में नौकर बनकर आ गया। अब मां बेटे के सामने थी और बेटा मां के सामने, पर मां बेटे के वियोग में दुखी थी और बेटा मां बाप के वियोग में। मां भोजन करने बैठती तो मुंह में कौर ही नहीं दिया जाता। बेटे को याद कर करके रोती बिलखती हुई कहती, ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसी हालत में होगा, होगा भी या नहीं, या किसी के यहाँ चौका बर्तन कर रहा होगा। वहीं खड़ा बेटा एक रोटी मांगता तो झिड़क देती, जा अभी काम कर, बचेगी तो फिर दूंगी। काम तो करता नहीं और बार बार रोटी मांगने आ जाता है। उसी बेटे के लिए रोती बिलखती और उसे ही रोटी मांगने पर झिड़कती। क्या है यह सब? आखिर वह मां दुखी क्यों है? क्या कहा बेटे के अभाव में? बेटा तो सामने है, बेटे के अभाव में नहीं। बेटे में अपनेपन के अभाव में ही वह मां परेशान हो रही है, दुखी हो रही है। उसका बेटा नहीं खोया है, बेटा तो सामने है। बेटे की पहचान खो गई है, बेटे में अपनापन खो गया है। मात्र पहचान खो जाने, अपनापन खो जाने का ही यह दुष्परिणाम है कि वह अनंत दुख के समुद्र में डूब गई है। उसकी संपूर्ण सुख शांति समाप्त हो गई है। उसे सुखी होने के लिए बेटे को नहीं खोजना, उसमें अपनापन खोजना है। एक दिन पड़ोसिन ने कहा, अम्मा जी एक बात कहूं, बुरा ना मानना, यह लड़का अभी बहुत छोटा है, इससे काम जरा कम लिया करें और खाना भी थोड़ा अच्छा दिया करें, समय पर दिया करें। सेठानी एकदम क्रोधित होती हुई बोली, क्या कहती हो, यह काम करता ही क्या है, दिन भर पड़ा रहता है और खाता भी कितना है, तुम्हें क्या पता, दिन भर चरता ही रहता है। बहुत कुछ समझाने के बाद भी वह सेठानी यह मानने को तैयार ही नहीं होती कि बच्चे के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्या है इस सब का कारण? एकमात्र अपनेपन का अभाव। कहते हैं माताएं बहुत अच्छी होती हैं, होती होंगी, पर मात्र अपने बच्चों के लिए। पराए बच्चों के साथ उनका व्यवहार देखकर तो शर्म से माथा झुक जाता है। यह सभी माताओं की बात नहीं है, पर जो ऐसी हैं उन्हें अपने व्यवहार पर एक बार अवश्य विचार करना चाहिए। एक बार एक दूसरी पड़ोसी ने बड़े ही संकोच के साथ कहा, अम्मा जी मेरे मन में एक बात बहुत दिनों से आ रही है, आप नाराज न हो तो कहूं। बात यह है कि यह नौकर शक्ल से और अकल से सब बातों में अपना पप्पू जैसा ही लगता है। वैसा ही गोरा भूरा, वैसे ही घुंघराले बाल, सब कुछ वैसा ही तो है, कुछ भी तो अंतर नहीं। और यदि आज वह होता तो होता भी इतना ही बड़ा। उसकी बात सुनकर सेठानी जी उल्लासित हो उठी। उनके लाडले बेटे की चर्चा जो हो रही थी, कहने लगी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, इसे देखकर मुझे भी अपने बेटे की और अधिक याद आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे यह मेरा ही बेटा हो। सेठानी की बात सुनकर उत्साहित होती हुई पड़ोसिन बोली, अम्मा जी, अपने पप्पू को खोए आज 8 वर्ष हो गए हैं। अब तक तो मिला नहीं और न अब मिलने की आशा है। उसके वियोग में कब तक दुखी होती रहोगी? मेरी बात मानो तो आप इसे ही गोद क्यों नहीं ले लेती? उसने इतना ही कहा था कि सेठानी तमतमा उठी, क्या बख्ती है, न मालूम किस कुजात का होगा यह। सेठानी के इस व्यवहार का एकमात्र कारण बेटे में अपनेपन का अभाव ही तो है। वैसे तो वह बेटा उसी का है, पर उसमें अपनापन नहीं होने से उसके प्रति व्यवहार बदलता नहीं है। अपना होने से क्या होता है? जब तक अपनापन न हो तब तक अपने होने का कोई लाभ नहीं मिलता। यहां अपने से भी अधिक महत्वपूर्ण अपनापन है भाई। यही हालत हमारे भगवान आत्मा की हो रही है। यद्यपि वह अपना ही है, अपना ही क्या, अपन स्वयं ही भगवान आत्मा है, पर भगवान आत्मा में अपनापन नहीं होने से उसकी अनंत उपेक्षा हो रही है। उसके साथ पराये बेटे जैसा व्यवहार हो रहा है। वह अपने ही घर में नौकर बनकर रह गया है। यही कारण है कि आत्मा की शुद्ध बुद्ध लेने की अनंत प्रेरणाएं भी कारगर नहीं हो रही हैं। अपनापन आए बिना कारगर होंगी भी नहीं। इसीलिए जैसे भी संभव हो अपने आत्मा में अपनापन स्थापित करना ही एकमात्र कर्तव्य है, धर्म है। इसी प्रकार चलते चलते वह लड़का 18 वर्ष का हो गया। एक दिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध हो गया कि वह लड़का उन्हीं सेठ जी का है। उक्त सेठानी को भी यह विश्वास हो गया कि वह सचमुच उसका ही लाडला बेटा है। अब आप बताइए, अब क्या होगा? होगा क्या? वह सेठानी जोर जोर से रोने लगी। सेठ जी ने समझाते हुए कहा, अब क्यों रोती है? अब तो हंसने का समय आ गया है। अब तो तुझे तेरा पुत्र मिल गया है। रोते रोते ही सेठानी बोली, मेरे बेटे का बचपन बर्तन मलते मलते यों ही अनंत कष्टों में निकल गया है। न वह पढ़ लिख पाया है, न खेल खा पाया है। हाय राम, मेरे ही आंखों के सामने उसने अनंत कष्ट भोगे हैं। न मैंने उसे ढंग का खाना ही दिया और न पल भर निश्चिंत हो आराम ही करने दिया। जब देखो तब काम में ही लगाए रखा। जो सेठानी इस बात को स्वीकार करने को कतई तैयार न थी कि वह उस बालक से बहुत काम कराती है और खाना भी ढंग का नहीं देती है, वही अब इकबालिया बयान दे रही है कि मैंने बहुत काम कराया है और खाना भी ढंग का नहीं दिया। यह सब अपनेपन का ही महात्म्य है। अब क्या उसे यह समझाने की आवश्यकता है कि जरा काम कम लिया करें और खाना भी अच्छा दिया करें? अब काम का तो कोई सवाल ही नहीं रह गया है और खाने की भी क्या बात है। अब तो उसकी सेवा में सब कुछ हाजिर है। व्यवहार में इस परिवर्तन का एकमात्र कारण अपनेपन की पहचान है, अपनेपन की भावना है। इसी प्रकार जब तक निज भगवान आत्मा में अपना अपनापन स्थापित नहीं होगा तब तक उसके प्रति अपनेपन का व्यवहार भी संभव नहीं है। इन देहादि पर पदार्थों से भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित होना ही एक अभूतपूर्व अद्भुत क्रांति है, धर्म का आरंभ है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, साक्षात मोक्ष का मार्ग है, भगवान बनने, समस्त दुखों को दूर करने और अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। अध्याय तीसरा, अपनी खोज। अपने में अपनापन ही धर्म है और पर में अपनापन ही अधर्म है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा निरंतर इस प्रकार की भावना भाते रहते हैं कि मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग मैं। है मोह निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग मैं। है धर्म निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। धर्मादि पर द्रव्यों एवं मोहादि विकारी भावों में से अपनापन छोड़कर उपयोग स्वरूपी शुद्ध निज भगवान आत्मा में अपनेपन की दृढ़ भावना ही धर्म है। अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति का मार्ग है। अतः निज भगवान आत्मा को जानने पहचानने का यत्न करना चाहिए और निज भगवान आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम तो बहुत प्रयत्न करते हैं, पर वह भगवान आत्मा हमें प्राप्त क्यों नहीं होता? भगवान आत्मा की प्राप्ति के लिए जैसा और जितना प्रयत्न करना चाहिए, यदि वैसा और उतना प्रयत्न करें तो भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य ही होती है। सच्ची बात तो यह है कि भगवान आत्मा की प्राप्ति की जैसी तड़प पैदा होनी चाहिए, अभी हमें वैसी तड़प ही पैदा नहीं हुई है। यदि अंतर की गहराई से वैसी तड़प पैदा हो जावे तो फिर भगवान आत्मा की प्राप्ति में देर ही न लगे। भगवान आत्मा की प्राप्ति की तड़प वाले व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, इसे हम उस बालक के उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिसकी माँ मेले में खो गई हो। एक 5 वर्ष का बालक माँ के साथ मेला देखने गया था। मेले की अपार भीड़ में वे दोनों बिछड़ गए। एक पुलिस चौकी पर माँ पहुंची और उसने बेटा खोने की रिपोर्ट लिखाई। दूसरी पुलिस चौकी पर बेटा पहुंचा और उसने माँ के खोने की रिपोर्ट लिखानी चाहिए, पर उसकी रिपोर्ट को सही रूप में कोई लिखता ही नहीं है। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से पूछा, कौन है? कांस्टेबल ने उत्तर दिया, एक खोया हुआ बालक आया है। बालक ने बीच में ही टोकते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं, मेरी माँ खोई है, मैं तो आपके सामने ही खड़ा हूँ। डपटते हुए कांस्टेबल बोला, चुप रह, कहीं माँ भी खोती है? खोते तो बच्चे ही हैं। आखिर उन्होंने यही रिपोर्ट लिखी कि एक खोया हुआ बालक आया है। जो भी हो, अब बालक से पूछताछ आरंभ होती है। क्यों भाई, तुम्हारा नाम क्या है? पप्पू। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मम्मी। तुम रहते कहाँ हो? अपने घर में। बालक के ऐसे उत्तर सुनकर पुलिस वाले आपस में कहते हैं कि जब यह बालक अपनी माँ को पहचानता ही नहीं है, उसका नाम तक भी नहीं जानता है, तो इसकी माँ को कैसे खोजा जाए? उनकी बातें सुनकर बालक सोचता है कि जिस नाम से मैं माँ को रोजाना बुलाता हूँ, क्या वह नाम नाम ही नहीं है? मम्मी कहकर जब भी बुलाता हूँ, माँ हाजिर हो जाती है, फिर भी ये लोग कहते हैं कि मैं माँ का नाम भी नहीं जानता। बालक यह सोच ही रहा था कि पुलिस वाला फिर पूछने लगता है, तेरी माँ मोटी है या पतली है? गोरी या काली? लंबी या ठिगनी? बालक ने तो कभी सोचा भी न था कि माताएं भी 6 प्रकार की होती हैं। उसने तो अपनी माँ को कभी इन रूपों में देखा ही न था। उसने तो माँ का मांपन ही देखा था, रूप रंग नहीं, कद भी नहीं। वह कैसे बताए कि उसकी माँ गोरी है या काली, लंबी है या ठिगनी, मोटी या पतली है? ये तो सापेक्ष स्थितियां हैं। दूसरों से तुलना करने पर ही किसी को गोरा या काला कहा जा सकता है, लंबा या ठिगना कहा जा सकता है, मोटा या पतला कहा जा सकता है। मैं आपसे ही पूछता हूं कि मैं गोरा हूं या काला, लंबा हूं या ठिगना, मोटा हूं या पतला? मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं, न गोरा हूं न काला हूं, न लंबा हूं न ठिगना हूं, और न मोटा ही हूं न पतला ही। मेरी बगल में एक अंग्रेज को खड़ा कर दें तो उसकी अपेक्षा मुझे काला कहा जा सकता है। किसी अफ्रीकन को खड़ा कर दें तो गोरा भी कहा जा सकता है। किसी ठिगने आदमी को खड़ा कर दो तो लंबा कहा जा सकता है, और मुझसे भी लंबे आदमी को खड़ा कर दो तो ठिगना भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार किसी मोटे आदमी को खड़ा कर दो तो मुझे पतला कहा जा सकता है, और मुझसे भी पतले आदमी को खड़ा कर दो तो मोटा भी कहा जा सकता है। मैं किसी की अपेक्षा भले ही मोटा पतला या गोरा काला हो सकता हूँ, पर निरपेक्ष बने तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ। उसने अपनी माँ की तुलना किसी दूसरे से की ही न थी, अतः वह कैसे बताए कि उसकी माँ कैसी है? उसके निरुत्तर रहने पर पुलिस वाले कहते हैं कि वह तो अपनी माँ को पहचानता ही नहीं है। पर क्या यह बात सच है? क्या वह बालक अपनी माँ को पहचानता नहीं है?
पहचानना अलग बात है और पहचान को भाषा देना अलग। हो सकता है कि वह अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकता हो, पर पहचानता ही न हो, यह बात नहीं है। क्योंकि यदि उसकी माँ उसके सामने आ जावे तो वह एक क्षण में पहचान लेगा। एक बीमा एजेंट ने कुछ वर्ष पूर्व उसकी माँ का एक बीमा करवाया था, अतः उसकी डायरी में सब कुछ नोट है कि उसकी लंबाई कितनी है, वजन कितना है, कमर कितनी है और सीना कितना है, अतः वह यह सब कुछ बता सकता है। पर उसके सामने वह माँ आ जाए तो पहचान न पावेगा। यदि पूछा जाए तो डायरी निकालकर देखेगा और फीता निकालकर नापने की कोशिश करेगा, पर सब बेकार है, क्योंकि जब उसने नाप लिया था तब सीना 36 इंच था और कमर 32 इंच, पर आज सीना 32 इंच रह गया होगा और कमर 36 इंच हो गई होगी। इसी प्रकार शास्त्रों में पढ़कर आत्मा की नाप जोख करना अलग बात है और आत्मा का अनुभव करके पहचानना, उसमें अपनापन स्थापित करना अलग बात है। जो भी हो, जब बालक कुछ भी न बता सका तो पुलिस वालों ने बालक को एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया जहां से मेले में आने वाली सभी महिलाएं निकलती थीं। बालक की सुरक्षा के लिए एक पुलिस वाले को भी साथ में खड़ा कर दिया और बालक से कहा, यहां से निकलने वाली प्रत्येक महिला को ध्यान से देखो और अपनी मां को खोजो। इससे एक ही बात फलित होती है कि बालक को अपनी मां स्वयं ही खोजनी होगी। किसी का कोई विशेष सहयोग मिलने वाला नहीं है, पुलिस वालों का भी नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक आत्मार्थी को अपने आत्मा की खोज स्वयं ही करनी होगी। किसी दूसरे के भरोसे कुछ होने वाला नहीं है। गुरु के भरोसे रहने पर भी आत्मा मिलने वाला नहीं है। अपनी मदद आप करो, यही महासिद्धांत है। किसी भी महिला के वहां से निकलने पर पुलिस वाला पूछता, क्या यही तेरी मां है? बालक उत्तर देता, नहीं। ऐसा दो चार बार होने पर पुलिस वाला चिढ़चिढ़ाने लगा और बोला, क्या नहीं नहीं करता है, जरा अच्छी तरह देख। क्या मां को पहचानने के लिए भी अच्छी तरह देखना होता है? वह तो पहली दृष्टि में ही पहचान ली जाती है, पर पुलिस वाले को कौन समझाए? पुलिस वाले की झल्लाहट एवं डांट डपट से बालक जो मां नहीं है उसे मां तो कह नहीं सकता। यदि डर के मारे कह भी दे तो भी उसे मां मिल तो नहीं सकती, क्योंकि उस मां को भी तो स्वीकार करना चाहिए कि यह बालक मेरा है। यदि कारणवश मां भी झूठ मूठ कह दे कि हां यह बालक मेरा ही है, पर उससे वह बालक उसका हो तो नहीं जाएगा। आप कह सकते हैं कि वह महिला भी ऐसा क्यों कहेगी, पर मैं कहता हूं, कह सकती है। बांझ हो तो बालक के लोभ में कह सकती है, और पुलिस वाले तो किसी से भी कुछ भी कहला सकते हैं। क्या आप यह नहीं जानते? पर बात यह है कि इतने मात्र से मां को बालक और बालक को अपनी मां तो नहीं मिल जावेगी। इसी प्रकार गुरु बार बार समझाएं और समझ में न आने पर हमें भला बुरा कहने लगे तो हम भय से, इज्जत जाने के भय से कह सकते हैं कि हां समझ में आ गया, पर इतना कहने मात्र से तो कार्य चलने वाला नहीं है। इज्जत वाले सेठ ने गुरुजी से पूछा, भगवान आत्मा कैसा है और कैसे प्राप्त होता है? गुरुजी ने 5 मिनट समझाया और पूछा, आया समझ में? सेठ ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने 5 मिनट और समझाया और फिर पूछा, अब आया? नहीं। उत्तर मिलने पर व्याकुलता से गुरुजी फिर समझाने लगे, उदाहरण देकर समझाया और फिर पूछा, अब तो आया या नहीं? नहीं। उत्तर मिलने पर झल्ला कर बोले, माथे में कुछ है भी या गोबर भरा है? घबराकर सेठ जी बोले, अब समझ में आ गया। इज्जत वाले थे ना, इज्जत जाती दिखी तो बिना समझ में आए ही कह दिया। पर बालक तो इज्जत वाला नहीं है ना, अतः वह मां के मिले बिना कहने वाला नहीं है, क्योंकि उसे इज्जत नहीं मां चाहिए। जिन्हें आत्मा से अधिक इज्जत प्यारी है उन्हें इज्जत ही मिलती है, आत्मा नहीं। जब बार बार बालक ना कहता रहा तो पुलिस वाला झल्ला कर बोला, मैं धूप में क्यों खड़ा रहूं, मां तो तुझे ही खोजनी है, अतः मैं वहां छाया में बैठा हूं। तू सभी महिलाओं को देख, जब मां मिल जावे तब मुझे बता देना। ऐसा कहकर पुलिस वाला दूर छाया में जा बैठा। बालक ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि पुलिस वाला कुछ सहयोग तो कर ही नहीं रहा था, व्यर्थ ही टोका टोकी कर ध्यान को भंग अवश्य कर रहा था। कम से कम अब उसके चले जाने पर बालक पूरी शक्ति से स्वतंत्रता से मां को खोज तो सकता है। इसी प्रकार जब साधक आत्मा की खोज में गहराई से तत्पर होता है, तब उसे अनावश्यक टोका टोकी या चर्चा वार्ता पसंद नहीं होती, क्योंकि वह उसके ध्यान को भंग करती है। उस बालक को अपनी मां की खोज की जैसी तड़प है, आत्मा की खोज की वैसी तड़प हमें भी जगे तो आत्मा मिले बिना नहीं रहे। वह बालक अच्छी तरह जानता है कि यदि सायंकाल तक मां नहीं मिली तो क्या होगा। घनी अंधेरी रात उसे पुलिस चौकी की काली कोठरी में अकेले ही बितानी होगी, और न मालूम क्या क्या बीतेगी उस पर। बात मात्र इतनी ही नहीं है, यदि मां मिली ही नहीं तो सारा जीवन भीख मांगकर गुजारना पड़ सकता है। इसका ख्याल आते ही वह कांप उठता है, सब कुछ भूलकर अपनी मां की खोज में संलग्न हो जाता है। क्या उस बालक के समान हमें भी यह कल्पना है कि यदि जीवन की संध्या तक भगवान आत्मा नहीं मिला तो चार गति और 84 लाख योनियों के घने अंधकार में अनंत काल तक भटकना होगा, अनंत दुख भोगने होंगे। यदि हमें इसकी कल्पना होती तो हम यह बहुमूल्य मानव जीवन यों ही विषय कषाय में बर्बाद नहीं कर रहे होते। उस बालक से यदि कोई कहे कि बहुत देर हो गई धूप में खड़े खड़े, जरा इधर आओ, छाया में बैठ जाओ, कुछ खाओ पियो, खेलो कूदो, मन बहलाओ, फिर खोज लेना अपनी मां को, क्या जल्दी है, अभी अभी तो बहुत दिन बाकी है, तो क्या वह बालक उसकी बात सुनेगा, शांति से छाया में बैठेगा, इच्छित वस्तु प्रेम से खाएगा, खेलेगा कूदेगा, मन बहलाएगा? यदि नहीं तो फिर हम और आप भी यह सब कैसे कर सकते हैं, पर कर रहे हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि हमें आत्मा की प्राप्ति की वैसी तड़प नहीं है जैसी उस बालक को अपनी मां की खोज की है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आत्मा की प्राप्ति के लिए जैसा और जितना पुरुषार्थ चाहिए वह नहीं हो रहा है। यही कारण है कि हमें भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। यह बात भी नहीं है कि वह बालक भूखा ही रहेगा, खाएगा, वह भी खाएगा, पर उसे खाने में कोई रस नहीं होगा। धूप बर्दाश्त न होने पर थोड़े समय को छाया में भी बैठ सकता है, पर उसका ध्यान मां की खोज में ही रहेगा। खेलने कूदने और मनोरंजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसी प्रकार आत्मा का खोजी भी भूखा तो नहीं रहता, पर खाने पीने में ही जीवन की सार्थकता उसे भासित नहीं होती। यद्यपि वह स्वास्थ्य के अनुरूप ही भोजन करेगा, पर अभक्ष्य भक्षण करने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। कमजोरी के कारण वह अनेक सुविधाओं के बीच भी रह सकता है, पर उसका ध्यान सदा आत्मा की ओर ही रहता है। खेलने कूदने और मनोरंजन में मनुष्य भाव खराब करने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जब मां की खोज में व्यस्त बालक का मन खेल कूद और मनोरंजन में नहीं लगता, तब आत्मा के खोजी को यह सब कैसे सुहा सकता है। संयोग तो पुण्य पापानुसार जैसे होते हैं वैसे होते हैं, उनमें ही वह अपना जीवन निर्वाह करता है। यदि पुण्य योग हुआ तो उसे अधिकतम लौकिक सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं, रहने को राजमहल भी मिल सकता है। यद्यपि वह राजमहल में रहेगा, उसे झोपड़ी में परिवर्तित नहीं करेगा, तथापि वह उन अनुकूल संयोगों में मग्न नहीं होता। उसका अंतर तो निज भगवान आत्मा की आराधना में ही रत रहता है। जिस प्रकार संध्या के पूर्व बालक को मां मिलनी ही चाहिए, उसी प्रकार जीवन संध्या के पूर्व हमें भगवान आत्मा की प्राप्ति होना ही चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प प्रत्येक आत्मार्थी का होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। मान लो मेला प्रातः 10 बजे आरंभ हुआ था और शाम को 6 बजे समाप्त होना है, इस प्रकार कुल मेला 8 घंटे का है। मान लो हमारा जीवन भी कुल 80 वर्ष का होगा, इस हिसाब से 10 वर्ष का 1 घंटा हुआ। मान लो 10 बजे हमारा जन्म हुआ तो 11 बजे हम 10 वर्ष के हो गए, इसी प्रकार 12 बजे 20 वर्ष के, 1 बजे 30 वर्ष के, 2 बजे 40 वर्ष के, 3 बजे 50 वर्ष के, 4 बजे 60 वर्ष के, 5 बजे 70 वर्ष के और 6 बजे पूरे 80 वर्ष के हो जाएंगे। दिन के 2 बज गए हैं, अभी तक मां नहीं मिली, तो वह बालक आकुल व्याकुल हो उठता है, क्योंकि उसे कल्पना है कि यदि शाम तक मां न मिली तो उसका क्या होगा। अरे भाई, हमारे तो 4 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, अर्थात हम तो 60 वर्ष के हो गए हैं और अभी तक आत्मा नहीं मिला। ऐसे ही 2 घंटे और निकल गए, 10-20 वर्ष और निकल गए, तो फिर क्या होगा हमारा। उस बालक के समान हमें भी इस बात की कल्पना है या नहीं, जरा एक बार गंभीरता से विचार तो करो। यह बहुमूल्य जीवन यूं ही बीता जा रहा है और हम रंग राग में ही मस्त हैं, क्या होगा हमारा। आत्मखोजी की दृष्टि भी उस बालक जैसी ही होनी चाहिए, जिस प्रकार वह बालक अपनी मां की खोज की प्रक्रिया में अनेक महिलाओं को देखता है पर उसकी दृष्टि किसी भी महिला पर जमती नहीं है। यह पता चलते ही कि यह मेरी मां नहीं है, वह नजर फेर लेता है, उसी को देखता नहीं रहता, यह नहीं सोचता कि यह मेरी मां तो नहीं है पर है तो सुंदर, किसी न किसी की मां तो होगी ही, पता चलाओ कि यह किसकी मां है, ऐसे विकल्पों में नहीं उलझता, उसके संबंध में विकल्पों को लंबाता नहीं है, अपितु तत्काल तत्संबंधी विकल्पों से निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार आत्मार्थी को भी चाहिए कि वह पर पदार्थों को जानते समय उनके संबंध में व्यर्थ ही विकल्पों को लंबा न करें, जिस प्रयोजन से उनका जानना बना है उसकी सिद्धि होते ही तत्संबंधी विकल्पों को विराम दे दें। किसी भी प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पर पदार्थ को जानकर उसे ही जानते रहना आत्मार्थी का लक्षण नहीं है। अपनी मां की खोज करने वाला बालक किसी अन्य महिला की सुंदरता पर रीझता नहीं है, उसे तो अपनी मां चाहिए, दूसरी महिलाओं से उसे क्या उपलब्ध होने वाला है। अपनी मां की खोज में व्यस्त बालक के पास दूसरी महिलाओं का सौंदर्य निरखने का समय ही कहां है, उन पर रीझने योग्य मानस ही उसके पास कहां है, वह तो अपनी मां की खोज में ही आकुल व्याकुल है। इसी प्रकार पर पदार्थों के अवलोकन से, उन पर रीझने से इस भगवान आत्मा को क्या मिलने वाला है। आत्मार्थी के पास इतना समय भी कहां है कि वह दूसरों की सुंदरता निरखता रहे, किसी आत्मार्थी के पास पर पदार्थों पर रीझने योग्य मानस भी कहां होता है, वह तो अपनी आत्मा की खोज के लिए संपूर्णतः समर्पित होता है। दूसरे की माताओं को जाना तो क्या, नहीं जाना तो क्या, अपनी मां मिलनी चाहिए। उसी प्रकार दूसरे पदार्थों को जाना तो क्या, नहीं जाना तो क्या, अपनी आत्मा जानने में आना चाहिए, पहचानने में आना चाहिए, क्योंकि हमें अनंत आनंद की प्राप्ति तो निज भगवान आत्मा के जानने से ही होने वाली है। यही कारण है कि जिनागम में स्वद्रव्य के आश्रय से सुगति और परद्रव्य के आश्रय से दुर्गति होना बताया गया है। जिस प्रकार वह बालक अन्य महिलाओं को जानता तो है पर उनकी ओर लपकता नहीं है, उनसे लिपटता नहीं है, पर जब उसे अपनी मां दिख जावेगी तो मात्र उसे जानेगा ही नहीं, उसकी तरफ लपकेगा भी, उससे लिपट भी जावेगा, उसमें तन्मय हो जावेगा, एकमेक हो जावेगा, आनंदित हो जावेगा। उसी प्रकार आत्मार्थी आत्मा भी पर द्रव्यों को जानते तो हैं पर उनमें जमते रमते नहीं, पर जब यह निज भगवान आत्मा उसके ज्ञान का गेय बनेगा तो वह उसे भी मात्र जानता ही नहीं रहेगा, अपितु उसी में जम जावेगा, रम जावेगा, उसी में तन्मय हो जावेगा। उसी में अपनापन स्थापित कर लेगा, अनंत आनंदमय हो जावेगा। उसकी यह अतीन्द्रिय आनंदमय निजावलोकन की दशा ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, मुक्ति का मार्ग है, सुखी होने का एकमात्र उपाय है, परमात्मा बनने की प्रक्रिया है, धर्म है। अधिक क्या कहें, जीवन में करने योग्य एकमात्र कार्य यही है। इसे ही स्वद्रव्य का आश्रय कहते हैं और यही सुगति भी है, बंध का निरोध भी इसी से होता है। अच्छा, तो अब कल्पना कीजिए कि उस बालक को माँ दिखाई दे गई और उसने उसे अच्छी तरह पहचान भी लिया कि यही मेरी माँ है, तो फिर वह दौड़कर माँ के पास जाएगा या पुलिस वाले के पास यह सूचना देने कि मेरी माँ मिल गई है? निश्चित रूप से वह माँ के ही पास जाएगा, क्योंकि एक तो वह माँ के वियोग में तड़प रहा था और दूसरे यह भी तो खतरा है कि जब तक वह पुलिस वाले को सूचना देने जाता है तब तक माँ फिर आंखों से ओझल हो गई। तो अतः वह तेजी से दौड़कर माँ के पास पहुंचेगा, पहुंचेगा ही नहीं, उससे लिपट जाएगा। माँ और बेटा तन्मय हो जाएंगे, अभेद हो जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे। उसी प्रकार जब इस आत्मा के दृष्टि में निज भगवान आत्मा आता है तब यह गुरु को या किसी अन्य को यह बताने नहीं दौड़ता कि मुझे आत्मा का अनुभव हो गया है, अपितु निज भगवान आत्मा में ही तन्मय हो जाता है, अपने में ही समा जाता है, एक रूप हो जाता है, अभेद हो जाता है, विकल्पातीत हो जाता है। जब वह माँ की ओर दौड़ा तो पुलिस वाला भी घबराया और उसके पीछे वह भी दौड़ा। पुलिस वाले की घबराहट का कारण यह था कि यदि बच्चा भीड़ में गायब हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसकी तो रिपोर्ट लिखी हुई है। पुलिस की कस्टडी से बालक का गायब हो जाना उसकी नौकरी जाने का कारण भी बन सकता है। जब पुलिस वाला वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि वह बालक किसी अधेड़ महिला से एकमेक हो रहा है, दोनों एक दूसरे से तन्मय हो रहे हैं। उन्हें एकाकार देखकर भी अपनी आदत के अनुसार पुलिस वाला घुड़क कर पूछता है, क्या यही तेरी माँ है? क्या अब भी यह पूछने की आवश्यकता थी? उनके इस भावुक सम्मिलन से क्या यह सहज ही स्पष्ट नहीं हो गया था कि यही वे बिछुड़े हुए माँ बेटे हैं जिनकी एक दूसरे को तलाश थी? जो इस सम्मिलन के अद्भुत दृश्य को देखकर भी न समझ पाए उससे कुछ कहने से भी क्या होगा? उसी प्रकार आत्मानुभवी पुरुष की दशा देखकर भी जो यह न समझ पाए कि यह आत्मानुभवी है उसे बताने से भी क्या होने वाला है? पुलिस वालों की वृत्ति और प्रवृत्ति से तो आप परिचित ही हैं, उनसे उलझना ठीक नहीं है, क्योंकि यह बता देने पर भी कि यही मेरी माँ है, वे यह भी कह सकते हैं कि क्या प्रमाण है इसका? जैसा कि लोक में देखा जाता है कि खोई हुई वस्तु पुलिस कस्टडी में रखी जाती है, केस चलता है, अनेक वस्तुओं में मिलाकर पहचानना होता है, तब भी मिले तो मिले, न मिले तो न मिले। मेरी यह घड़ी यहीं पर रह जावे और इसे कोई पुलिस में जमा करा दे तो समझना कि अब हमें इसका मिलना बहुत कठिन है, केस चलेगा। उसी प्रकार की अनेक घड़ियों में मिलाकर मुझसे भी पहचान कराई जावेगी। मैं आपसे ही पूछता हूं कि एक कंपनी की एक सी घड़ियों में क्या आप अपनी घड़ी पहचान सकेंगे? नहीं, तो फिर समझ लीजिए कि मेरी घड़ी मिलना कितना दुर्लभ है। अतः पुलिस वालों से उलझना ठीक नहीं है, वे जो पूछें चुपचाप उत्तर देते जाओ, इसी में भलाई है, क्योंकि यदि उन्होंने माँ और बेटे दोनों को ही पुलिस कस्टडी में रख दिया तो क्या होगा? यह जगत भी पुलिस वालों से कम थोड़े ही है, इससे उलझना भी ठीक नहीं है। जगत के लोग यह भी तो पूछ सकते हैं कि क्या प्रमाण है कि तुम ज्ञानी हो, तो क्या ज्ञानी जन फिर इस बात के प्रमाण भी पेश करते फिरेंगे? प्रमाण पेश करने पर उन प्रमाणों की प्रामाणिकता पर संदेह किया जाएगा, अतः ज्ञानी जन इस प्रकार के प्रसंगों में जगत से उलझते नहीं हैं, इसी में सबकी भलाई है। क्या वह बालक इस बात की घोषणा करता है कि मुझे मेरी माँ मिल गई है? बालक या माँ के खोने पर तो यहाँ वहाँ तलाश भी की जाती है और समाचार पत्रों में विज्ञापन भी निकाला जाता है, पर मिल जाने पर तो कोई घोषणाएं नहीं करता, विज्ञापन नहीं निकालता। इसी प्रकार आत्मा की खोज की प्रक्रिया में तो पूछताछ हो सकती है, होती भी है, होना भी चाहिए, पर आत्मा की प्राप्ति हो जाने पर घोषणा की आवश्यकता नहीं होती, विज्ञापन की भी आवश्यकता नहीं होती। खोए हुए लोगों के फोटो तो समाचार पत्रों में छपे देखे हैं, पर मिले हुए लोगों के फोटो तो आज तक नहीं देखे। यदि कोई छपाए तो यही समझा जाता है कि यह तो स्वयं के संपन्न होने के प्रचार का हल्कापन है। इसी प्रकार ज्ञानी होने की घोषणाएं भी सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने की ही वृत्ति है, प्रवृत्ति है। बालक को मां मिल गई, इतना ही पर्याप्त है, उसे मां मिलने का यश नहीं चाहिए। इसी प्रकार ज्ञानियों को तो आत्मा की प्राप्ति ही पर्याप्त लगती है, उन्हें आत्मज्ञानी होने का यश मोहित नहीं करता। बालक को तो मां मिलना ही पर्याप्त है, वह तो उसी में मग्न है, अत्यंत संतुष्ट है, पूरी तरह तृप्त है, उसे अन्य कोई वांछा नहीं रहती। इसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्माओं को तो आत्मा की प्राप्ति ही पर्याप्त है, वे तो उसी में मग्न रहते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसी में पूरी तरह तृप्त रहते हैं, उन्हें अन्य कोई वांछा नहीं रहती। वे इस बात के लिए लालायित नहीं रहते कि जगत उन्हें ज्ञानी समझे ही। बालक को मां मिल गई, बस वह तो उसमें मग्न है, तृप्त है, पर मां के सामने एक समस्या है कि बालक के खोने पर उसने एक घोषणा की थी कि जो व्यक्ति बालक को उससे मिलाएगा, खोज लाएगा, उसे वह 500 रुपये पुरस्कार देगी। अब वह पुरस्कार किसे दिया जाए? पुलिस को, बालक को या मां को? पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं, मां को तो बालक ने ही खोजा है और बालक को मां ने खोजा है। पुलिस तो पुरस्कार पाने योग्य नहीं, पुलिस तो पुरस्कार पाने योग्य नहीं और मां पुरस्कार देने वाली है। अब बालक ही शेष रहता है, पर बालक को तो पुरस्कार नहीं, मां चाहिए थी, जो उसे मिल गई है। अब उसे पुरस्कार में कोई रस नहीं है, वह तो अपनी मां में ही इतना तृप्त है कि पुरस्कार की ओर उसका लक्ष्य ही नहीं है। भाई, पुलिस का कोई योगदान ही न हो, यह बात भी नहीं है। आखिर बालक ने अपनी मां की खोज पुलिस की सुरक्षा में ही की है, पुलिस के मार्गदर्शन में ही की है। यदि पुलिस की सुरक्षा उसे न मिली होती तो बालकों को उड़ाने वाला कोई गिरोह उसे उड़ा ले गया होता। यदि पुलिस वाले मार्मिक बिंदु पर उसे खड़ा नहीं करते तो मां की खोज में बालक यहां वहां मारा मारा फिरता और मां हाथ न लगती। पुलिस ने उसे ऐसा स्थान बताया कि जहां से प्रत्येक महिला का निकलना अनिवार्य सा ही था, तभी तो उसे मां मिल सकी। अतः पुरस्कार पुलिस को ही मिलना चाहिए। इतने श्रम के बावजूद भी पुलिस को पुरस्कार के अतिरिक्त और मिला ही क्या है? बालक को तो मां मिल गई, मां को बालक मिल गया, पुलिस को क्या मिला? यह पुरस्कार मिल रहा है सो आप वह भी नहीं देना चाहते, यह ठीक नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी गुरुओं के संरक्षण और मार्गदर्शन में ही आत्मा की खोज का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। यदि गुरुओं का संरक्षण न मिले तो यह आत्मा कुगुरुओं के चक्कर में फंसकर जीवन बर्बाद कर सकता है, तथा यदि गुरुओं का सही दिशा निर्देश न मिले तो अप्रयोजन भूत बातों में ही उलझकर जीवन बर्बाद हो जाता है। अतः आत्मोपलब्धि में गुरुओं के संरक्षण एवं मार्गदर्शन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। गुरुजी अपना कार्य आत्मोन्मुखी उपयोग छोड़कर शिष्य का संरक्षण और मार्गदर्शन करते हैं, उसके बदले में उन्हें श्रेय के अतिरिक्त मिलता ही क्या है? आत्मोपलब्धि करने वाले को तो आत्मा मिल गया, पर गुरुओं को समय की बर्बादी के अतिरिक्त क्या मिला? फिर भी हम उन्हें श्रेय भी न देना चाहें, यह तो न्याय नहीं है। अतः निमित्त रूप में श्रेय तो गुरुओं को ही मिलता है, मिलना भी चाहिए। उपादान निमित्त की यही संधि है, यही सुमेल है। जिस प्रकार उस बालक ने अपनी मां की खोज के लिए विश्व की सभी महिलाओं को दो भागों में विभाजित किया, एक भाग में अकेली अपनी मां को रखा, दूसरे भाग में शेष सभी महिलाओं को रखा, उसी प्रकार आत्मा की खोज करने वालों को भी विश्व को दो भागों में विभाजित करना आवश्यक है। एक भाग में स्वद्रव्य अर्थात निज भगवान आत्मा को रखें और दूसरे भाग में परद्रव्य अर्थात अपने आत्मा को छोड़कर सभी पदार्थ रखे जावें। जिस प्रकार उस बालक को अपनी मां की खोज के संदर्भ में देखने जानने योग्य तो सभी महिलाएं हैं, पर लिपटने चिपटने योग्य मात्र अपनी मां ही है, उसी प्रकार आत्मार्थी के लिए भी देखने जानने योग्य तो सभी पदार्थ हैं, पर जमने रमने योग्य निज भगवान आत्मा ही है। रति करने योग्य तो सुगति के कारण रूप स्वद्रव्य ही है। अपनापन स्थापित करने योग्य अपना आत्मा ही है, दुर्गति के कारण रूप पर द्रव्य नहीं। इसीलिए मोक्ष पाहुड़ में कहा गया है, पर द्रव्य से हो दुर्गति, निज द्रव्य से हो ती सुगति। यह जान कर रति करो, निज में अर करो पर से विरति। अपनी मां को खोजने की जिस प्रकार के धुन लगन उस बालक को थी, आत्मा की खोज की उसी प्रकार की धुन लगन आत्मार्थी को होना चाहिए। आत्मार्थी की दृष्टि में स्वद्रव्य अर्थात निज भगवान आत्मा ही सदा ऊर्ध्व रूप से वर्तना चाहिए। गहरी और सच्ची लगन के बिना जगत में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, तो फिर आत्मोपलब्धि भी गहरी और सच्ची लगन के बिना कैसे संभव है। सभी आत्मार्थी भाई पर द्रव्य से विरक्त हो स्वद्रव्य की आराधना कर आत्मोपलब्धि करें और अनंत सुखी हों। इसी मंगल भावना से विराम लेता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मैं स्वयं भगवान हूं के निर्माण करता हैं। रीड आउट लाउड।